अध्याय 3 गद्य की प्रतिष्ठा और खड़ी बोली कविता का प्रारंभ 1857 से 1900। भारतेंदु और उनका मंडल। जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में हिंदी गद्य का निर्माण हो रहा था उन्हीं में बंगला, मराठी, गुजराती तथा अन्य भारतीय भाषाओं का गद्य भी विकसित और निर्मित हो रहा था। इसलिए अपनी अलग अलग विशेषताओं के बावजूद उनके साहित्य में एक प्रकार का अद्भुत साम्य भी दिखाई देता है। देशभक्ति तथा अंग्रेजी की शोषण नीति के विरोध में सभी एकमत हैं। इस समय ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो इतिहास की प्रगति का साथ देते और साहित्य के माध्यम से उनकी गतिशीलता को और भी शक्तिशाली ढंग से अग्रसारित करते। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंगला में ईश्वरचंद विद्यासागर, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपूलणकर और गुजराती में नर्मदा शंकर ने यही कार्य किया और इसमें ही इनकी महत्ता भी है। इन सभी व्यक्तियों की रचनाओं को अपने आप में साहित्य की उच्चतर कोटि में नहीं रखा जा सकता, फिर भी वे अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व गिने जाते हैं। इन्होंने ऐतिहासिक गतिविधि के अंतः संघर्षों को परखा और उसके गतिशील जीवंत तत्वों को आगे बढ़ाने में भरपूर सहायता की। आर्थिक व्यवस्था में जिस पूंजीवाद का उदय हो रहा था वह राष्ट्रीय चेतना का उन्नायक था। इसके कारण जिस व्यक्तिवाद का आविर्भाव हुआ वह पहले पहल निबंधों में प्रकट हुआ। इस राष्ट्रीय चेतना को पहले पहल भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 ने पहचाना और हिंदी गद्य के माध्यम से उसे अभिव्यक्ति भी दी। उनका जन्म 1850 ईस्वी में काशी के एक अतिशय समृद्ध कुल में हुआ था। उनके पिता बाबू गोपाल चंद्र स्वयं साहित्यकार और विद्यानुरागी थे। इनके यहाँ कवियों का जमघट लगा रहता था। पंडित ईश्वरी दत्त सरदार, कवि दीनदयाल गिरी, कन्हैयालाल लक्ष्मी शंकर व्यास, गुलाब राय नागर आदि उनके सभा सदस्य थे। बालक हरिश्चंद्र पर इस साहित्यिक वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, उनके जीवन का बीज मंत्र था। इसके लिए उन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली। 1870 ईस्वी में कविता वर्धनी सभा की नींव पड़ी। इसके माध्यम से नए कवियों को प्रोत्साहित करना उनका लक्ष्य था। 1873 में इन्होंने पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना की। इस क्लब में लेख पाठ होता था। इस क्लब में पढ़े गए लेख हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका में छपते थे। धर्म और ईश्वर संबंधी विचारों के प्रचारार्थ 1873 में उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। वे बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित वैष्णव थे किंतु बाह्याडंबरों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। वे जन्म से उच्च वर्ग के व्यक्ति थे किंतु कर्म से जन सामान्य के साथ थे। वे महारानी विक्टोरिया के प्रति श्रद्धावान थे पर अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध थे। वे एक ओर रीतिकालिक रसिक थे तो दूसरी ओर आधुनिक चेतना से संपन्न। इस प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की कुल 35 वर्ष की अल्पकालिक अवस्था में सन 1885 ईस्वी में यह लौकिक लीला समाप्त भी हो गई। पर इतने थोड़े समय में ही उन्होंने जो कुछ किया वह सर्वदा अविस्मरणीय रहेगा। सन 1857 ईस्वी में देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जनता का एक प्रकार की क्रांति से गुजर चुकी थी। इसके फलस्वरूप महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र निकला और कंपनी के राज्य की परिसमाप्ति हो गई। लेकिन इससे अंग्रेजों की नीति में कोई मौलिक अंतर नहीं आया। थोड़े ही दिनों में लोग इस कपटपूर्ण घोषणा पत्र की वास्तविकता को समझ गए और राष्ट्रीय चेतना को आगे बढ़ाने में संलग्न हो गए। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उसे वे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले जाने आए। विचारधारा बदल चली थी। उनके मन में देश हित, समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। काल की गति के साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। भारतेंदु के कार्यों का लेखा जोखा अथवा उनके ऐतिहासिक रोल का आकलन करने के लिए उनके द्वारा संचालित, प्रकाशित तथा संपादित 3 पत्रिकाओं कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 ईस्वी के पन्नों को उलटना पड़ेगा। चंद्रिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित है नवीन प्राचीन संस्कृत भाषा और अंग्रेजी के गद्य पद्यमय काव्य, प्राचीन वृत्त, राज्य संबंधी विषय, नाटक, विद्या और कला पर लेख, लोकोक्ति, इतिहास, परिहास, गद्य और समालोचना संभूषिता। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण का कार्य भी जारी था, जिसे भारतेंदु के सहयोगी बिहारी चौबे निष्पन्न कर रहे थे। चौबे जी भाषा विज्ञान विषयक लेख भी लिख रहे थे। इंडियन एंटीवेरी टाइम्स आदि से संबद्ध प्रसंगों का चयन भी किया जाता था। ग्राउस आदि के हिंदी संबंधी वक्तव्यों पर विचार विनिमय भी प्रकाशित होता था। हरिश्चंद्र मैगजीन में धर्म भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की रिपोर्टें छापी जाती थी। मध्यवर्गीय समाज पर विचार का कार्य उसी समय प्रारंभ हो गया था। कानून की पुस्तकों के अनुवाद की योजना का प्रकाशन भी होता था। इसके साथ साथ पुराने ढंग की कविताएं, समस्या पूर्तियां, नायिका भेद पर क्रमशः लेख भी प्रकाशित होते रहते थे। उनकी पत्रिकाओं से साफ है कि गद्य के क्षेत्र में वे पूर्णतः आधुनिक थे तो काव्य के क्षेत्र में परंपरावादी। इसके मूलभूत कारणों की व्याख्या यथा प्रसंग आगे की जाएगी। अभी हम अपने को गद्य के विकास तक ही सीमित रखना चाहेंगे। गद्य को विविध विषयों की ओर ले जाने के साथ साथ उन्होंने पूर्ववर्ती गद्य की त्रुटियों का परिहार करते हुए उसे नए विचारों की वाहकता के अनुरूप संस्कृत किया। सन 1873 में उन्होंने स्वयं लिखा कि हिंदी नए चाल में ढली। सन 1873 ईस्वी, इसी को हरिश्चंद्री हिंदी भी कहा जाता है। भारतेंदु हिंदी गद्य के संबंध में राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह के अतिवादों से बचते हुए मध्यम मार्ग के पक्षपाती थे। यह मध्यम मार्ग केवल मेलजोल की भाषा ही लेकर नहीं आया, उसने भाषा को सजीव बनाकर लेखक और पाठक के बीच आत्मीय रिश्ता भी जोड़ा। आचार्य शुक्ल, हरिश्चंद्र तथा उनके मंडल की भाषा शैली की स्वच्छंदता, चपलता और उमंग पर मुग्ध हैं। यह उमंग जितनी भाषिक है उतनी ही सामाजिक भी। भारतेंदु का व्यक्तित्व अपनी उदारता, गुणग्राहकता आदि के कारण इतना आकर्षक और लोकप्रिय था कि उनके आसपास लेखकों का अच्छा खासा मंडल तैयार हो गया। उनमें बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, काशीनाथ खत्री, राधाकृष्ण दास आदि प्रमुख हैं। स्वयं भारतेंदु अपने परिवेश को अंतर प्रांतीय बनाना चाहते थे। चंद्रिका के सहायक संपादकों में ईश्वरचंद विद्यासागर बंगाल, दामोदर शास्त्री बिहार, राधाकृष्ण लाहौर, नवीन चंद राय पंजाब आदि का नाम छपता था। इससे भारतेंदु के व्यापक भारतीय दृष्टिकोण का पता चलता है। अपनी इस व्यापक चेतना के फलस्वरूप उन्होंने हिंदी गद्य के अनेक रूपों, निबंध, नाटक, उपन्यास, यात्रा वर्णन, इतिहास आदि में ढाला। उनके सहयोगियों ने भी अपने ढंग से उनका हाथ मजबूत किया। इन लेखकों के विषय संबंधी एकरूपता का पाया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि वे सभी एक ही युग चेतन के सूत्र में बंधे थे, पर अपनी वैयक्तिक विशिष्टता के कारण वे एक दूसरे से काफी भिन्न भी थे। भारतेंदु सही अर्थ में आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता हैं। निबंध तो आधुनिक गद्य की अपनी खास चीज है, कविता और नाटक की अपनी ही परंपरा कम दीर्घ नहीं है। उपन्यास और कहानी लेखक के मूल में बंगला की प्रेरणा हो सकती है, पर निबंध उस समय की उस व्यक्तिक स्वच्छंदता की देन है जो उस ऐतिहासिक परिवेश के कारण उत्पन्न हुई थी। इसीलिए अपने विचारों और मान्यताओं को जितने खुले और वैचित्र्यपूर्ण ढंग से उन लोगों ने निबंधों में व्यक्त किया, उतने खुले ढंग से किसी रचना प्रकार के माध्यम से नहीं। भारतेंदु के पूर्व हिंदी निबंध के नाम पर कुछ धार्मिक उपदेश, प्रवचन, सिद्धांत, परिचय तो मिल जाता है, पर साहित्यिक निबंध नहीं मिलता। भारतेंदु के निबंधों में उनकी प्रगतिशील मान्यताएं, व्यंग्य, विनोद, उदारता, सजीवता सब कुछ के दर्शन होते हैं। निबंध चाहे ऐतिहासिक हो अथवा गवेषणात्मक, सामाजिक हो अथवा यात्रा परक, सर्वत्र उनके व्यक्तित्व की झांकी देखी जा सकती है और अपनी व्यापकता में संपूर्ण युग चेतना को समेटे हुए है। अकबर और औरंगजेब का तुलनात्मक निबंध अकबर की ओर उनके झुकाव का द्योतक है। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन में स्वामी दयानंद और केशव चंद्र सेन के संबंध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें केशव चंद्र को अधिक उदाराशय और आत्मनिरपेक्ष बताया गया है। यह भी उनके अधिक उदारवादी और प्रगतिशील होने का ही प्रमाण है। नई चेतना के फलस्वरूप उन्होंने मरणोन्मुखी रूढ़ियों को सर्वत्र झटका दिया है। काशी नामक निबंध में हिंदुओं के अंधविश्वास और अज्ञान का बुरी तरह पर्दाफाश किया गया है। तदीय सर्वस्व अस्पृश्यता और बाह्याडंबर का उद्घाटन करने में किसी तरह की कोर कसर नहीं करता। बलिया के व्याख्यान में उन्होंने मुसलमानों की संकीर्णताओं पर भी गहरा प्रहार किया है। यात्रा वर्णन के बीच बीच जहां कहीं उन्हें अवकाश मिला है, रूढ़ियों पर चोट करने से बाज नहीं आए हैं। एक व्यक्ति का पिता पानी में डूबकर मर गया है। पंडित जी ने जिस मंत्र से पिंडा कराया उसका उल्लेख भारतेंदु ने यों किया है, आर गंगा पार गंगा, बीच में पड़ गई रेत, तहां पर गए गाय को चले बुझबूला देत, धर दे पिंडवा सबै जात गोपाल की, शीर्षक से ही जाति पाति के विभेद का विरोध किया गया है। अपने देशवासियों के अज्ञान संकीर्णता आदि की घोर भर्त्सना करते हुए वे उन्हें जगाने का प्रयास भी करते हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है में वे लिखते हैं, वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए का चुप साधी रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है। यह कार्य स्वयं भारतेंदु कर रहे थे। उन्होंने उसी में और आगे कहा है, जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों वह अपने सुख को होम करके अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो, देखा देखी थोड़े दिनों में सब हो जाएगा। जब तक 100-200 आदमी बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र नहीं जाएंगे, कैद न होंगे वरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश नहीं सुधरेगा। वस्तुतः यह सुधार की बात नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन का द्योतक है। देश की गरीबी कर स्लेस अपने देश की बनी हुई वस्तुओं के उपयोग का उल्लेख तो उन्होंने जगह जगह किया है। जातीय संगीत नामक निबंध में पुस्तक लेखन के लिए अनेक विषयों का निर्देश किया है जो तत्कालीन जागरूकता का प्रमाण है। बाल निकेतन जनपत्री की विधि, बालकों की शिक्षा, अंग्रेजी फैशन, स्वधर्म चिंता, भ्रूण हत्या और शिशु हत्या, फूट बैर, मैत्री और ऐक्य, बहुजातित्व और बहुभक्तित्व, योग्य पूर्वज आर्यों की स्तुति, जन्मभूमि आलस्य और संतोष, व्यापार की उन्नति, नशा अदालत, हिंदुस्तान की वस्तु, हिंदुस्तानियों को व्यवहार करना, भारतवर्ष के दुर्भाग्य का वर्णन, ये विषय स्वयं भारतेंदु की चतुर्मुखी जागरूकता के परिचायक हैं। इनमें से कुछ विषय शिक्षात्मक हैं पर अधिकांश जन्मभूमि तथा उनकी समस्याओं से संबद्ध हैं। सच पूछिए तो भारतेंदु के निबंध नाटक काव्य सभी कुछ यही विषयों को दृष्टि में रखकर लिखे गए हैं, अतः वे स्वदेश्य हैं। भारतेंदु ने सतर्कता पूर्वक अपने पूर्ववर्ती गद्य की त्रुटियों का भरसक परिहार किया। यूं तो आवश्यकता अनुसार भाषा का परिष्कार संस्कार होता चला आ रहा था। राजा शिवप्रसाद ने राजा भोज का सपना में जिस पुष्ट भाषा शैली का व्यवहार किया था, अथवा राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने अनुवादों में भाषा शैली की जो सरसता उत्पन्न की थी, वह इस बात का द्योतक है कि भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य का निखार हो चला था, पर भारतेंदु ने उसे व्यवस्था देकर आगे बढ़ाया। भारतेंदु को अनेक विषयों पर स्वदेश से लिखना था। उक्त दोनों अनुवादों में पूर्व निश्चित विचारों और भावों को ढालना था, पर हरिश्चंद्र को दोनों दृष्टियों से मौलिक प्रयास करना था। उन्हें अपने विचारों को जनसाधारण तक पहुँचाना था, उनको जगाना था, उनमें पूर्ण चेतना को विकसित करना था, इसलिए उनकी शैली पर व्याख्यानात्मक की छाप साफ देखी जा सकती है। किंतु यह धार्मिक व्याख्यानों से भिन्न है क्योंकि इसमें लेखक का व्यक्तित्व भी किन्हीं अंशों में प्रतिफलित हुआ है। उन्हें इतिहास का अद्भुत बोध था। मुसलमानी शासक के अत्याचार से मुक्त होकर हिंदू जनता को राहत का अनुभव हुआ, इस तथ्य का भारतेंदु ने खुद उल्लेख किया है। इसके आधार पर कुछ लोग जिनमें तथाकथित प्रगतिवादी भी शामिल हैं, भारतेंदु की रचनाओं में हिंदू राष्ट्रवाद सूंघ लेते हैं। ऐसे लोगों को अपनी घ्राण शक्ति ठीक करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के अकबर और औरंगजेब, महात्मा मुहम्मद, बीबी फातिमा आदि निबंध पढ़ना चाहिए जिनमें मुसलमानी धर्म के प्रति उनका आदर और सम्मान व्यक्त हुआ है। अंग्रेजी राज्य में कुछ अच्छाइयां भी थी, प्रेस, मुद्रण यंत्र, यातायात के नए साधन आदि। धार्मिक दृष्टि से भी वे उदार थे, अतः उसकी प्रशंसा न करना भी प्रशंसा की बात नहीं है। लेकिन वे मुसलमानी राज को प्लेग और अंग्रेज राज्य को क्षयी का रोग कहते थे, अंग्रेजों की शोषण नीति के सख्त खिलाफ थे। इसके प्रतिरोध में उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का समर्थन किया, औद्योगिकरण की मांग की और निज भाषा को सब उन्नति का मूल कहा। सामंतवाद और साम्राज्यवाद के इजारेदारों, पंडों, पुरोहितों, मौलवियों, राज्यों, जमींदारों, अमलों पर गहरा प्रभाव किया, प्रहार किया। राष्ट्रीय के अर्थ में जातीय शब्द का प्रयोग पहली बार उन्होंने ही किया। भाषा के संबंध में जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है, यद्यपि उसका निर्वाह वे सर्वत्र नहीं कर सके, फिर भी भरसक उसको पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहे। सामान्यतः उनके वाक्य छोटे, व्यंजक और भावपूर्ण होते हैं। भाषा की यह सफाई और सरसता उनके समसामयिक किसी अन्य लेखक में नहीं मिलेगी। हास्य और व्यंग्य के लिए उनका अद्भुत अपूर्व स्वप्न देखा जा सकता है। ठेठ बनारसी ठाठ के उन्मेष से मुहावरों और लोकोक्तियों में अद्भुत सप्राणता आ गई है। विशेष पर प्रेम प्रीतम, पर मेरे प्रीतम, अब तक घर न आए क्या? क्या उस देश में बरसात नहीं होती या किसी सौत के फेर में पड़ गए कि इधर की सुधी भूल गए? कहाँ तो वह प्यार की बातें, कहाँ एक संग ऐसा भूल जाना कि चिट्ठी भी न भिजवाना। हाँ, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ? मेरी तो कोई रोनी मुँह बोली सहेली नहीं कि उससे दुखड़ा रो सुनाऊँ, कुछ इधर उधर की बातों से ही जी बहलाऊँ। हिंदी भाषा। आगे बालकृष्ण भट्ट, 1845 से 1915। भारतेंदु के समसामयिक निबंध लेखकों में सच्चे अर्थ में दो ही निबंधकार थे, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। दोनों के व्यक्तित्व में सादृश्य की अपेक्षा विसादृश्य अधिक है। मिश्र जी का व्यक्तित्व ग्राम्य था तो भट्ट जी का नागर। पहले में सरलता और दूसरे में मनमौजीपन था तो दूसरे में परिष्कृत और परिपक्वता। मिश्र जी कम पढ़े लिखे थे पर भट्ट जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्हें अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। अनेक प्रकार के आर्थिक सामाजिक संकटों के कारण उनकी वाणी में तलखी आ गई थी। मिश्र जी में धार्मिक कट्टरता के कारण रूढ़िवादिता भी मिलती है, पर भट्ट जी रूढ़ियों के जानी दुश्मन थे। भट्ट जी का पहला निबंध कलिराज सभा 1872 में कविवचन सुधा में छपा। 1877 में उन्होंने हिंदी प्रदीप का संपादन प्रारंभ किया। प्रदीप के मुख पृष्ठ पर छपा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रगट वे आनंद भरे। इससे पत्र की नीति और भट्ट जी के व्यक्तित्व दोनों का पता लगता है। अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए वे 33 वर्षों तक उसे निरंतर निकालते रहे। भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र राजनीतिक मान्यताओं में उदारवादी या लिबरल कहे जा सकते हैं। वे देशभक्ति और राजभक्ति दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहते थे, किंतु भट्ट जी को यह खिचड़ी नहीं पसंद थी। हिंदी लेखकों में वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस नीति का स्पष्ट और तीखा विरोध किया। वे देशभक्ति और राजभक्ति को एक दूसरे का विरोधी मानते थे। उन्होंने लिखा है, हमारा कथन है कि राजभक्ति और प्रजा का हित दोनों का साथ कैसे निभ सकता है, जिसे हंसना और गाल का फुलाना, बहुरी चबाना और सहनाई बजाना एक संग नहीं हो सकता, ऐसा ही यह भी असंभव है और दुर्घट है। राजनीति में वे लोकमान्य तिलक के अनुयायी थे। अंग्रेजों को इतनी खरी खोटी न तो भारतेंदु सुना सके थे और न तो प्रताप नारायण मिश्र। सांप बन के काटना और ओझा बन झालना यह हिम्मत भार लोगों को भी मालूम है। अंग्रेज बाहर से भले भले लगे हैं कुटिलता की खान। अंग्रेजी शासन की कटु आलोचना करने के साथ ही भट्ट जी ने विदेशी शासन की विकृतियों को अपेक्षाकृत गहराई में बैठकर देखा। वे अपने युग के साहित्यकारों में सर्वाधिक व्यापक और गहन दृष्टि रखने वाले व्यक्ति थे। सरकारी पिट्ठुओं के कट्टर शत्रु होने के कारण राजा शिव प्रसाद और सर सैयद अहमद खां को उन्होंने आड़े हाथों लिया। जहां तक साहित्यिक निबंधों का प्रश्न है, उनमें विविधता अधिक है। एक ओर वे मिश्र जी के टक्कर का व्यंग्य विनोद प्रधान निबंध लिख सकते हैं तो दूसरी ओर गंभीर विश्लेषणात्मक निबंध चलता है। निबंध का एक उदाहरण देखिए। चलता है रांड का चरखा वो भटियारिन का मुंह, बस जो चाल कहे को रुकता है, करकसा लड़ाकिन महरियों की जुबान, एक मुंह में सौ सौ गाली, जबान क्या कतरनी हो गई, आंधी हो गई, रेल का इंजन हो गई। किसी का मुंह चला तो किसी का हाथ चल निकला। दे तमाचा गालों में चट दोनों झोटी झोटी करते गटपट लड़ते लड़ते लस्त हो गई, पर जबान न रुकी। वाह रे चलने का जोश। फिर भी इसमें एक तरह की सुसंबद्धता और विश्लेषणात्मक आ गई है। भय और समुची तादर, दृढ़ता आत्मनिर्भरता, प्रेम और भक्ति, ज्ञान भक्ति, स्पर्धा प्रीति आदि उनके विश्लेषणात्मक और मनोवैज्ञानिक निबंध हैं, जो आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास द्वारा विकसित हुए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल में पूर्णता की उपलब्धि की। गद्य काव्य के आद्याचार्य भी वे ही हैं। चंद्रोदय निबंध गद्य काव्य का पहला नमूना है। भाषा पर भट्ट जी का पूरा अधिकार था। विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग उनके सामर्थ्य का द्योतक है। उनके निबंधों के प्रतिपादन का ढंग भी इतना सरस है कि पढ़ने में कथाओं सा आनंद आता है। विनोद और व्यंग्य तो उनकी लेखन शैली के अभिन्न अंग हैं। उनके व्यंग्य प्रताप नारायण मिश्र की अपेक्षा अधिक चुटीले और कर्कश होते हैं। उर्दू के शब्दों का प्रयोग करने में इन्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। नहुसत, बदजायका, हिर्स आदि सैकड़ों शब्दों के प्रयोग मिलेंगे। कहीं कहीं तो अनुच्छेद के अनुच्छेद उर्दू शब्दावली से गुथे रहते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अर्थबोध की सुगमता के लिए ये कोष्ठ में अंग्रेजी के शब्द जैसे फीलिंग, परसेप्शन रख देते हैं। कहीं कहीं अंग्रेजी के शीर्षक तक रखे हुए हैं। इस प्रकार की शब्दावली का व्यवहार वे केवल मौज में आकर नहीं करते थे, प्रत्युत इसके पीछे तत्कालीन आवश्यकता की प्रेरणा थी। उस समय अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए हिंदी शब्दावली अपरिचित सी थी। विशेष अर्थ गर्म शब्दों के स्पष्टीकरण के लिए उनका अंग्रेजी पर्याय देना आवश्यक था। कुछ विशेष लेखकों की बात जाने दीजिए तो अंग्रेजी शब्दों का व्यवहार केवल इसलिए करते हैं कि लोग जान ले अंग्रेजी में उनकी भी गति है। भट्ट जी की भाषा संबंधी देन अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु खड़ी बोली के आदर्श स्वरूप का निर्माण वे न कर सके। भाषा में पूर्वीपन का प्रयोग सर्वत्र मिलता है। उठकर के स्थान पर उठाए, बैठकर के स्थान पर बैठाए प्रायः लिखा करते थे। कहीं कहीं लिंग संबंधी अशुद्धियां भी मिलती हैं, जैसे हमारी समाज आदि। पर मुहावरों के प्रयोग में भट्ट जी बड़े निपुण थे। इनके सभी लेखों के मुहावरों के प्रयोग से एक प्रकार की सजीवता आ गई है। इन्होंने अपने संस्कृत ज्ञान का पूरा पूरा उपयोग किया है। निबंधों के बीच बीच में श्लोक, संस्कृत के श्लोक उद्धृत कर अपने विचारों को शास्त्र तथा पुराने विद्वानों के विचारों के मेल में रख कर उनकी पुष्टि करते जाते हैं। यथास्थान हिंदी के दोहे और चौपाइयों का उदाहरण भी दे देते हैं। अरबी फारसी के शेर और मिसरे रखने में भी उन्हें किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं प्रतीत होती। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 ईस्वी को साहित्य के क्षेत्र में लाने का प्रमुख श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि वचन सुधा को है। वे विद्यार्थी काल में ही भारतेंदु की रचनाएं पढ़ा करते थे। कानपुर के ललित जी के संसर्ग में उनमें साहित्य के प्रति अभिरुचि जगी। भारतेंदु और मिश्र जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें प्रकृति के स्वच्छंदतावादी कहा जा सकता है। भारतेंदु तो अपने अभिजात्य संस्कारों के कारण बहुत कुछ संयमित थे, पर मिश्र जी पर ऐसा कोई संस्कार नहीं था। वे अपने ही रंग में मस्त रहने वाले व्यक्ति थे। ब्राह्मण पत्र के माध्यम से उन्होंने गद्य रचना के अनेक रूपों, निबंध, नाटक, कथा साहित्य आदि को समृद्ध किया। निबंधों के लिए उन्होंने जो विषय चुने वे उनकी मनमौजी प्रकृति के सर्वथा अनुकूल है। बेगार, रिश्वत, देशोन्नति, वर्षा रम, टेढ़ जानी, शंका सब काहूं, मुच, इनकम टैक्स, देसी कपड़ा, पतिव्रता, दबी हुई आग, धरती माता, गोरक्षा, वज्रमूर्ख, पुलिस की निंदा क्यों की जाती है, भेड़िया धसान, छल, विलायत यात्रा, सुचाल शिक्षा आदि को उदाहरणों के रूप में पेश किया जा सकता है। यद्यपि उनके बहुत से निबंध शुद्ध शैक्षणिक हैं, पर इस युग के ये ही ऐसे निबंधकार हैं जिनके प्रत्येक निबंध में इनका व्यक्तित्व सहज ढंग से अनिवार्यता अभिव्यक्त हो उठा है। भारतेंदु के प्रत्येक निबंध में ऐसी बात नहीं मिलेगी। युग चेतना की अभिव्यक्ति उन्होंने अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छंद ढंग से की है। भारतेंदु जिस शिष्ट समाज में उत्पन्न हुए थे उसकी छाप उन पर सर्वत्र दिख पड़ती है, इसलिए उनमें एक प्रकार का संयम दिखाई देता है। उनकी चुटकी अधिकांश स्थलों पर मीठी है, पर प्रताप नारायण मिश्र सामान्य घर के थे। गांव की बेतकलूफी उनके विचारों और शैली दोनों में मिलेगी। उनके व्यंग की तलखी जी को तिलमिला देने वाली होती है। उनका खरापन अपनी पैनी धार के लिए प्रसिद्ध रहेगा। अपनी बात को वो पाठकों तक पहुंचाने में बिना किसी प्रयास के पहुंचाने में वे सिद्ध हैं। भारतेंदु के सहयोगियों में किसी के निबंध में व्यक्तित्व की इतनी गहरी अभिव्यक्ति नहीं पाई जाती। भाषा और शैली में नागरिकता खोजने वाले साहित्य रसिकों को मिश्र जी से निराशा ही हाथ लगेगी, पर जो लोग उनकी निर्बंधता को, उनके व्यंग्य और विनोद को, उनकी बेतकल्लुफी को अकृत्रिम ढंग से व्यक्त देखना चाहेंगे, उनको आशातीत प्रसन्नता होगी। हिंदी की गद्य शैली को मिश्र जी की यह बहुत बड़ी देन है। जगह जगह अशुद्ध शब्द प्रयोग से भाषागत तथा बैसवाड़ी के प्रभाव से वाक्यगत दोष दिखाई पड़ते हैं, किंतु गांव के अनेक मुहावरों और शब्दों ने भाषा की व्यंजकता को बढ़ाया ही है। एक उदाहरण लीजिए। उचित वक्ता भाई पूछते हैं, क्या प्रयागराज में अंग्रेजी राज्य नहीं है? क्यों? क्या वहां चुंगी नहीं है? क्या वहां उर्दू नहीं है? क्या वहां दरिद्र नहीं है? क्या वहां शराब नहीं है? क्या वहां गोरे रंग का अयोग्य पक्षपात नहीं है? कानेकुब्ज प्रकाश से कहो रंडरोना बंद करें, जल्दी समाज का ढंचर बदल डालिए, जल्दी कीजिए, कहीं निश्चय कुशल नहीं है। रंडरोना शब्द किसी सहराती को देहाती लग सकता है, पर क्या इसकी व्यंजना और किसी अन्य शब्द से की जा सकती है? उनकी शैली वार्तालाप से अधिक निकट है, जो निर्बंध निबंध की मूलभूत विशेषता है। उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से 1894 ने अगले पत्र आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद में अनेक लेख लिखे हैं। वे भारतेंदु के विचारों के पूर्ण समर्थक थे। उन्होंने अपने कई लेखों में अंग्रेजी नीति का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने साफ कहा है कि अंग्रेजी राज्य में कर के कारण जो क्लेश किसानों को अब सहना पड़ा है, वह पहले मुसलमानों के राज्य में न था। आनंद कादम्बनी का नवीन संवत्सर तो मानो उनकी कूटनीति के पर्दाफाश के निमित्त ही लिखा गया था। अंग्रेजों की कथनी और करनी का भेद उसमें अच्छी तरह उद्घाटित किया गया है, पर उनके गद्य में रीति तत्व कम नहीं है। यह तत्व उनकी रहन सहन, वेशभूषा, आकृति प्रकृति में ही था, और साहित्य सेवा को उन्होंने स्वांतः सुखाय स्वीकार किया था। ऋतु वर्णन संबंधी निबंध में नायिकाओं की मनोदशाओं का वर्णन उनकी उसी मनोवृत्ति का सूचक है। भाषा संबंधी अलंकृति रईसों की अलंकृति ही थी। सानुप्रास का चमत्कारिक पदावली पूर्ण भाषा की ओर उनकी विशेष रुझान थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके पेंचीले मजबून की जो शिकायत की है वह यथार्थ है। इनके अतिरिक्त हरिश्चंद्र उपाध्याय, विनायक शास्त्री बेताल, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, भीमसेन शर्मा आदि ने भी हिंदी निबंध के विकास में यथाशक्ति योग दिया। अनेक प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति का फल यह हुआ कि हिंदी निबंध की बहुत सी शैलियां चल पर निकली। निबंध तथा विचारात्मक विश्लेषणात्मक निबंधों की चर्चा की जा चुकी है। भारतेंदु के चंद्रोदय, सूर्योदय तथा भट्ट जी के चंद्रोदय निबंधों में भावात्मक निबंधों का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वर्णनात्मक निबंधों लेखकों ने भारतेंदु तथा हरिश्चंद्र उपाध्याय प्रमुख थे। इस समय ज्ञान विज्ञान की कतिपय शाखाओं पर भी निबंध प्रस्तुत किए गए। नाटक दृश्य श्रव्य काव्य है, इसलिए यह लोक चेतना से अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। जिस प्रथम प्रकरण का उल्लेख नाट्यशास्त्र में आता है, उसके लेखन और अभिनय का मूल प्रेरक है लोक चेतना। भारतेंदु तथा उसके सहयोगियों ने इस चेतना के प्रसार के लिए नाटक को अत्यंत उपयोगी माध्यम समझा है। इसलिए स्वाभाविक था कि नाटकों में उस युग की अनेक समस्याओं को अभिव्यक्त होने का अच्छा अवसर मिलता, पर निबंध साहित्य से नाट्य साहित्य की स्थिति भिन्न थी। हिंदी निबंधों के पूर्व हमारे यहाँ इस तरह की कोई परंपरा नहीं थी, अतः उसका विकास सर्वथा स्वतंत्र रूप से हुआ। लेकिन इस देश में नाटक की अति दीर्घ परंपरा के रहते हुए हिंदी नाटक का उससे कुछ ग्रहण न करना असंभव था, इसलिए इस रचना में समन्वय और अंतर विरोध दोनों ही अधिक दिखाई पड़ते हैं। हिंदी नाटकों को संस्कृत नाटकों की जो हास्योन्मुखी परंपरा विरासत में मिली उसे स्वस्थ नहीं माना जा सकता, और भवभूति में जिस हास्योन्मुखता के बीज मिलते हैं उनका विकास सन ईस्वी की 10वीं शताब्दी के पश्चात लिखे गए संस्कृत नाटकों में साफ परिलक्षित है होता है। इस समय के अधिकांश नाटक शास्त्रीय अनुबंधों में विजड़ित पूर्व नाट्य कृतियों की विकृत अनुकृतियां मात्र हैं। मुरारी, राजशेखर, जयदेव और सेमेश्वर की नाट्य रचनाएं इस श्रेणी में आती हैं। मुरारी के अनर्घ राघव की कविता भी अत्यंत साधारण कोटि की है। राजेश्वर का बाल रामायण कथानक के अनगढ़पन तथा अनुपात के अनौचित्य के कारण काफी कुख्यात हो चुका है। जयदेव का प्रसन्न राघव काव्योपजीवी क्रियान्विति महीन तथा शिथिल है। संस्कृत की इसी छहशील परंपरा में प्राणचंद चौहान का रामायण नाटक संवत 1667, बनारसी का समय सार संवत 1693, रघुराज नागर का सभा सार संवत 1757 और लच्छीराम का करुणा भरण संवत 1772 आता है। ब्रजभाषा के इनके छंदोबद्ध ग्रंथों को नाटक की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। न तो काव्य की श्रेणी से इनका कोई मूल्य है और न नाटक की दृष्टि से। अनेक त्रुटियों के बावजूद भी रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह संवत 1846 से 1911 के आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना जा सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र का नहुस 1841 ईस्वी भी आनंद रघुनंदन की भांति ब्रजभाषा में ही लिखा गया है। खड़ी बोली में नाटक लिखने का सूत्रपात भारतेंदु ने ही किया। बंगला नाटक रंगमंचीय दृष्टि से लिखे जा रहे थे। हिंदी नाटकों को पारसी रंगमंच का सामना करना था, उसके सामने अलग समस्या थी। लोक नाटकों का साहित्यिक नाटकों में बादरायण संबंध स्थापित करना और यह दलील देना कि रासलीला, रामलीला, स्वांग, नौटंकी आदि हिंदी नाटकों के पूर्व रूप हैं, अपने आप में रोचक होते हुए भी तर्कसंगत नहीं है। बंगला के गिरीश चंद्र घोष 1844 से 1911 ने यात्रा की कतिपय विशेषताओं को अपने नाटकों में ग्रहण किया, किंतु इसके आधार पर नहीं कहा जा सकता कि बंगला नाटक यात्रा का परिष्कृत रूप है। संस्कृत नाटकों की इतनी लंबी नाट्य परंपरा की उपेक्षा करते हुए लोक नाटकों के संबंध स्थापन संभव भी नहीं था। भारतेंदु ने नाट्य सर्जना के लिए संस्कृत नाटकों के साथ पाश्चात्य नाट्य तंत्र को भी अपनाया। इस समय की मांग के अनुरूप नाटकों के प्राचीन ढांचे के परिवर्तन करना आवश्यक था। भारतेंदु ने अपने नाटक निबंध में लिखा है, किंतु वर्तमान समय में इस काल के कवि तथा सामाजिक लोगों की रुचि उस काल की अपेक्षा अनेकांश में विलक्षण है। इससे संप्रति प्राचीन मत अवलंबन करके नाटक आदि दृश्य काव्य लिखना युक्ति संगत नहीं बोध होता। नाटकादि दृश्य काव्य प्रणयन करना हो तो प्राचीन समस्त रीति ही परित्याग करे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो सब प्राचीन रीति व पद्धति आधुनिक सामाजिक लोगों की मत पोषिका होगी वह सब अवश्य ग्रहण होगी। स्पष्ट है कि भारतेंदु ने न तो पूर्ण रूप से प्राचीन नाट्य रूप अपनाया और न ही पाश्चात्य नाट्य रीति, उन्होंने दोनों का समन्वय किया। अपनी जगन्नाथपुरी की यात्रा में वे बंगला के नए नाटकों से परिचित हुए, उनसे प्रेरणा लेकर वे नाटक लिखने की ओर अग्रसर हुए। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर 1867 नाटक के अनुवाद से होती है। रत्नावली, पाखंड, विडम्बन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी अनुदित है। कर्पूर मंजरी प्राकृत से अनुदित है और दुर्लभ बंधु अंग्रेजी। अन्य नाटक संस्कृत से अनुदित किए गए हैं। सत्य हरिश्चंद्र पर बंगला नाटक की छाया है, इसे अर्ध अनुदित कहा जा सकता है। भारतेंदु ने अनुवाद करने के लिए जिन नाटकों का चुनाव किया वह स्वदेश से है। रत्नावली के संबंध में निश्चयात्मक रूप से कहीं नहीं कहा जा सकता कि यह उन्हीं का अनुवाद है। यदि इसे उन्हीं का मान ले तो कहना होगा कि प्रकृति से ही सहृदय और रसिक होने के कारण उदयन की प्रेम कहानी में रस लेना उनके लिए अस्वाभाविक नहीं था। अपने व्यक्तिगत सामंती संस्कारों के कारण इस दरबारी नाटक कोर्ट प्ले में रुचि लेना भी उनके लिए असंगत नहीं कहा जा सकता। बाद में इसे बहुत उपयोगी न समझकर ही कदाचित उन्होंने इसे पूरा न किया हो। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी संस्कृत का एक श्रेष्ठ नाटक है जो शास्त्रीय प्रतिबंधों को अतिक्रमित कर जाता है। इसका कथ्य तथा शिल्प दोनों नए युगों के अनुकूल तथा आधुनिकता के मेल में है। नवागत युग के लिए भारतेंदु ने इसका अनुवाद श्रेयस्कर समझा। इस नाटक के उपसंहार में जिन गीतों का निर्देश किया गया है राष्ट्रीय चेतना के द्योतक हैं। बंगला नाटक विद्या सुंदर के छाया अनुवाद का मुख्य कारण है उसमें उठाई गई प्रेम विवाह की समस्या, अंत में नायक का इसे बुरा कर्म बताना तथा नायिका का इसे अपराध कहना तत्कालीन सामाजिक बंधनों का परिणाम है। सत्य हरिश्चंद्र की सृजन प्रेरणा को किसी न किसी बाह्य सामाजिक स्रोत में ढूंढ निकालने का दावा करना दूर की कौड़ी लाना है। इसे छायानुवाद माना जाए या मौलिक कृति यह विवाद है। यह विवाद भी कोई विशेष महत्व नहीं रखता। सच तो यह है कि जहां भारतेंदु ने अपने समाज की अनेक त्रुटियों को नाटक के माध्यम से हमारे सम्मुख रखा वहां वे उच्चतर मानवीय आदर्शों को भी सामने ले आए। यह सत्य त्याग बलिदान के उच्चतर आदर्शों से अनुप्राणित है। इनके अतिरिक्त कर्पूर मंजरी तथा प्रबोध चंद्रोदय के एक खंड दृश्य का अनुवाद पाखंड विडम्बन शीर्षक से किया है। पाखंड विडम्बन में मदिरा सेवन का पर प्राकारांतर से व्यंग किया गया है। धनंजय विजय का कथानक तो पुराना ही है पर भरत वाक्य में भारतेंदु ने जो परिवर्तन किया है वह उनकी आधुनिकता का परिचायक है। इसमें राजा को मदहीन होने तथा कर में छूट करने की कामना व्यक्त हुई है। शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस के दुर्लभ बंधु अनुवाद के मूल में उक्त नाटक की श्रेष्ठता के प्रति उतना आकर्षण नहीं है जितना उसमें प्रतिपादित नीतिमत्ता के प्रति। उनमें मौलिक नाटकों में वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती प्रेम योगिनी विशस्य विस्मौसधम चंद्रावली भारत दुर्दशा अंधेर नगरी नीलदेवी और सती प्रताप की गणना की जाती है। वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती 1872 ईस्वी एक प्रहसन है जिसमें धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के कुकृत्यों का मजाक उड़ाया गया है। अंधेर नगरी 1881 जैसा तीखा व्यंग इसमें नहीं है। इसमें राजकीय अस्त व्यस्तता का बड़ा ही जीवंत चित्र खींचा गया है। प्रेम योगिनी अधूरी है पर अपने अधूरेपन में ही एक अत्यंत सशक्त यथार्थवादी परंपरा को जन्म देती है। काशी के चार स्थानों में जुटने वाले भिन्न भिन्न ढंग के व्यक्ति अपने कुत्सित व्यापारों की एकता में एक हैं। भारतेंदु के इस वर्णन से काशी के प्रति श्रद्धालुओं को बड़ा गहरा धक्का लगता है लेकिन धर्म प्राण काशी का यह भी एक पहलू है। विशस्य विस्मौसधम में देसी रजवाड़ों की दुष्प्रवृत्तियों का उद्घाटन करते हुए उन्होंने उनके समर्थक अंग्रेजों को भी विष ही माना है। भारत दुर्दशा में भारत की अधोगति का बहुत ही रोचक और यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। चंद्रावली प्रेमाशक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण है। नीलदेवी में भारतीय नारियों के वीरत्व पातिव्रत्य आदि गुणों को उभारा गया है। सती प्रताप में सावित्री के माध्यम से एक उच्चादर्श की प्रतिष्ठा की गई है। विषय वस्तु के साथ साथ नाट्य तंत्र के प्रति भारतेंदु ने आधुनिक दृष्टिकोण ही अपनाया। नाटक नामक निबंध में उनका कहना है कि अब नाटक में कहीं आशी प्रवृत्ति नाट्यालंकार कहीं प्रकरी कहीं संफेट कहीं पंचसंधि व ऐसे ही अन्य विषयों की कोई आवश्यकता नहीं रही। संस्कृत नाटक की भांति हिंदी नाटक में इनका अनुसंधान करना व किसी नाटकांग में इनको यत्नपूर्वक रखकर हिंदी नाटक लिखना व्यर्थ है। प्रेम जोगिनी के पारिपार्श्विक का कथन भी इसके अनुकूल है। उसके खेलने से लोगों को वर्तमान समय का ठीक नमूना दिखाई पड़ेगा और वह नाटक भी नई पुरानी दोनों रीति मिल के बना है। वस्तुतः समय का ठीक नमूना प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अधिकांश नाटक लिखे। अपनी सांस्कृतिक परंपरा की गति पूर्णतः निष्ठावान रहते हुए उन्होंने सामान्य जीवन के विधिवत पात्रों दलाल गंगापुत्र गडेरिया कुंजड़िन कवि एडिटर को अपने नाटकों में यथार्थ रूप में चित्रित किया है। भारत दुर्दशा में पूरा सुशिक्षित मध्य वर्ग ही पात्र है जिसे आगत संकट से देश का उद्धार करना है। इस सिलसिले में अधिक जिम्मेदारी कवि और एडिटर पर है, मुख्यतः एडिटर पर। संपादक के इस दायित्व का बोध भारतेंदु तथा उनके सहयोगियों को अच्छी तरह ज्ञात था। वे स्वयं संपादक थे और उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जगाने में जो निस्वार्थ प्रयत्न किया वह बाद में बहुत कम देखा गया। अपने विचारों को नाटक के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कई नाट्य संस्थाएं भी स्थापित की जो समय समय पर नाटकों को रंगमंच पर उतारा करती थी। पारसी नाटक कंपनियों के कुरुचिपूर्ण और असामाजिक भावनाओं के परिहार का प्रयास भी उन्होंने इसी माध्यम से किया। रंगमंच की दृष्टि से उनका सबसे महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। नौटंकी शैली पर आधारित यह नाटक अपने क्रियात्मक शब्दों से व्यंग्यात्मक गीतों में ऐसा नाट्य बिंब प्रस्तुत करता है जो सामाजिक होते हुए भी समय को अतिक्रमित कर जाता है। उस युग में इतना प्राणवान, जिंदा दिल, प्रबुद्ध और जागरूक दूसरा व्यक्तित्व नहीं मिलेगा। उन्होंने जिस महान उद्देश्य से चालित होकर साहित्य सेवा का कार्य अपने हाथों में लिया था वह असी धारा व्रत की तरह अत्यंत दुस्तर था। इसका मूल्य भी उन्हें कम नहीं चुकाना पड़ा। बड़े बड़े सत्ताधारियों ने उनके विरुद्ध क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए। ब्रिटिश महाप्रभुओं ने उन्हें डराने धमकाने में क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए, पर हरिश्चंद्र अपने सत्य विचारों से कभी नहीं डिगे। जो कुछ उन्होंने उचित समझा, ठीक समझा, देश और जन कल्याण के अनुकूल समझा उसे डंकी की चोट कहा। उनका व्रत भी तो था, पै दृढ़ व्रत श्री हरिश्चंद्र को तरैन सत्य विचार। यह केवल अयोध्या नरेश सत्य संध हरिश्चंद्र के संबंध में ही सत्य नहीं था बल्कि स्वयं भारतेंदु के संबंध में उससे बड़ा सत्य था। इसे कुछ लोग भारतेंदु की पूर्व गर्वोक्ति मानते हैं, पर यही तो उनके जीवन का सत्य था, यही तो उनके जीवन की संपूर्ण साधना थी। अन्यथा भारतेंदु के स्थान पर वे भी सैयद अहमद की तरह सर होते। नाटक की विविध दिशाएं। इस काल के नाटकों की मूलवर्ती विषय वस्तु तत्कालीन युग सत्य से अनुप्राणित होने के कारण पुराने स्वस्थ आचार विचार को परिगृहित तथा नवीन मूल्यों को प्रस्थापित करने की ओर विशेष रूप से रही है। यह प्रवृत्ति रोमांटिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, राष्ट्रीय और व्यंग्यात्मक प्रहसन नाटकों में सर्वत्र परिलक्षित होती है। रोमांटिक नाटकों में श्रीनिवास दास 1851 से 1897 का रणधीर प्रेम मोहिनी, 1877 की सोरीलाल गोस्वामी का मयंक मंजरी नाटक उल्लेख्य है। इनके प्रणयन के मूल में आर्य चरित्र शोधन की भावना ही मुख्य रूप से क्रियाशील थी। इसका फल यह हुआ है कि दोनों में उपदेशों की भरमार हो गई है। गोस्वामी जी उपदेश तो अपने केंद्रीय उद्देश्य सती धर्म की मर्यादा से संबद्ध है, पर श्रीनिवास जी दुनिया भर के उपदेशों को एक ही स्थान पर एकत्र कर देना चाहते हैं। पर विषय और विधान की दृष्टि से वे सर्वथा रोमांटिक है। रणधीर और वीरेंद्र अद्भुत साहसी और पराक्रमी हैं। अपनी प्रेमिकाओं को प्राप्त करने के लिए वे जिस साहस का परिचय देते हैं वह मध्यकालीन शौर्य की याद दिलाता है। बीच बीच में कतिपय समसामयिक समस्याओं का भी सन्निवेश कर लिया गया है, जैसे अमीर और गरीब का भेद, राजाओं का अत्याचार आदि, किंतु अभी तक रीतिकालीन वातावरण से पीछा न छूट पाने के कारण सभी प्रमुख पात्रों में छिछोरापन आ गया है। रणधीर प्रेम मोहिनी का कथानक शिथिल, अगतिपूर्ण तथा संवाद अनावश्यक रूप से लंबे हैं। पात्रानुकूल विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग इसे एक ऐसा अजायब घर बना देता है कि पाठक के पल्ले कम ही पड़ पाता है। मयंक मंजरी का कथानक अपेक्षाकृत चुस्त तथा कार्य कारण की श्रृंखला सुसंबद्ध है। इस नाटक की सबसे बड़ी त्रुटि है कि वह कविताओं से भरा पड़ा है जिससे नाटक के प्रवाह में काफी बाधा पड़ती है। मयंक मंजरी का नायक वीरेंद्र तो रीतिकाल के पिछले खेवे की कविताओं में वर्णित नायक का रोल अदा करता दिखाई पड़ता है। अपने कथोपकथनों द्वारा वह सोहदा प्रतीत होने लगता है। दोनों नाटकों की नायिकाएं टिपिकल रीतिकालीन हैं, जो चुहलबाजी, छेड़छाड़, तीरे नजर और इशारेबाजी की कला में प्रवीण हैं। हाँ, इनका प्रेम एकांतिक और एकनिष्ठ है। सब मिलकर तंत्र और प्रतिपादित दोनों में ये रोमांटिक हैं। दोनों नाटक तंत्रीय दृष्टि से अंग्रेजी नाट्यकला के अधिक समीप है। रणधीर और प्रेम मोहिनी नाम ही प्रेमियों एंड जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है। मयंक मंजरी में एक अंक में एक ही दृश्य रखा गया है। इस प्रकार की कला का जो श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है, वह प्रथम प्रयोक्ता होने के कारण गोस्वामी जी को मिलना चाहिए। अमान सिंह गोठिया का मयंक मंजरी भी इसी के अंतर्गत माना जाएगा। ऐतिहासिक रोमांस। ऐतिहासिक रोमांसों को नाटक की विषय वस्तु बनाने का मूल उद्देश्य अपने पूर्वजों के विस्मृत गौरव का स्मरण दिलाकर तत्कालीन समाज को आत्मगौरव का बोध कराना था। इस प्रकार के नाटक भारतेंदु की नील देवी की परंपरा में लिखे गए, पर राधा कृष्णदास के महाराणा प्रताप सिंह के अतिरिक्त एक भी अन्य नाटक उल्लेखनीय नहीं कहा जा सकता। श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर, काशीनाथ खत्री का 1849 से 1891 का सिंधु सेज की राजकुमारियां और गुन्नौर की रानी, राधा कृष्णदास का महारानी पद्मावती आदि केवल नाम के ऐतिहासिक नाटक हैं। नाट्य तंत्र की दृष्टि से महाराणा प्रताप सिंह में कई खामियां हैं। नाटक का द्वितीय अंग कथा वस्तु का अनिवार्य अंग नहीं बन पाया है। गुलाब सिंह और मालती का प्रणय प्रसंग जो प्रासंगिक कथा वस्तु के रूप में आता है, मुख्य कथा का सहायक नहीं हो सका है, किंतु इसके सन्निवेश में नाटकीय वातावरण रसमय जरूर बन गया है। फिर भी नाटककार के मुख्य उद्देश्य की सिद्धि में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती है। महाराणा के माध्यम से जो देश प्रेम तथा भामाशाह के अभूतपूर्व तथा विस्मरणीय त्याग से जिस उत्कट आदर्श को प्रस्तुत किया गया है, वह राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में बहुत ही सफल कहा जाएगा। प्रहसन। इस काल के निबंधों में व्यंग्य का जो पैनापन दिखाई पड़ता है, वह प्रहसनों में भी दृष्टिगोचर होता है। जिस उद्देश्य को लेकर, जिस लक्ष्य के लिए लेखक साधना कर रहे थे, उसकी बहुत बड़ी पूर्ति प्रहसनों के माध्यम से हुई। इस संक्रांति काल में सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तन के लिए प्रहसन बहुत ही उपयुक्त साधन था। इसलिए स्वाभाविक था कि लेखकों का झुकाव उस ओर होता। नई प्रगति की विरोधी सभी प्रकार की मनोवृत्तियों पर व्यंग किया गया। फलस्वरूप घिसी पिटी रूढ़िग्रस्त मान्यताओं, अंधविश्वासों आदि को प्रहसनकारों ने अपने व्यंग्य का लक्ष्य बनाया। पाश्चात्य भाषा और संस्कृति में रंगे हुए लोगों को भी अच्छी खबर ली गई। राधाचरण गोस्वामी 1858 से 1925 और खड्ग बहादुर मल 1853 से 1889 ईस्वी इस काल के प्रमुख प्रहसनकार थे। गोस्वामी जी वृंदावन के प्रतिष्ठित गोस्वामियों में थे और उनकी छद्म लीलाओं से अच्छी तरह परिचित थे। तन मन धन की गोसाई जी को अर्पण में धर्मगुरुओं के व्याभिचारों की पोल खोलकर उनका पर्दाफाश किया गया है। बड़े मुंह मुहासे में परनारी गमन का दुष्परिणाम बतलाया गया है। इसमें प्रकारांतर से हिंदू मुस्लिम एकता की ओर भी संकेत किया गया है। गोस्वामी जी ने वृंदावन से भारतेंदु नामक एक पत्र भी निकाला था। खड्ग बहादुर मल्ल मझौली के महाराज कुमार थे। बांकीपुर के खड्ग विलास प्रेस की स्थापना उन्हीं के नाम पर हुई थी। डॉक्टर रामदीन सिंह के संपादकत्व में उन्होंने क्षत्रिय पत्रिका का संपादन भी किया था। भारत आरत प्रहसन में उन्होंने शासकों और ओहदेदारों की दुर्वृत्तियों तथा शासितों की दुर्बलताओं पर गहरा व्यंग किया है। व्यक्ति की उन्नति के लिए भाषा और धर्म का परित्याग करने वाले बंगाली बाबू की आत्मभर्त्सना देखते ही बनती है। अपनी भाषा की कदर्थना करने वाली बंगाली बाबू से अंग्रेज मजिस्ट्रेट कहता है, सुअर, हम तुमने अंग्रेजी बोलना नहीं मांगता, अपना मुल्क की बोली बोलो। पर आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन पर उक्त मजिस्ट्रेट की गाली का कोई असर नहीं पड़ता। देवकी नंदन के जयनार सिंह में ओझाई के विश्वासियों पर व्यंग किया गया है। गोपाल राम गहमरी के देश दशा में सरकारी अलहकारों की धांधली को व्यंग का विषय बनाया गया है। अंबिका दत्त व्यास की देसी घी और चर्बी व्यवसायिक कुरूपता का अच्छा नमूना है। इन प्रहसनों में पूंजीपतियों और सरमायादारों, शासकों आदि की अवांछनीय तत्वों के रूप में अंकित किया गया है, जो नवीन चेतना का द्योतक है। खड्ग बहादुर मल्ल ने जमींदारों के मनमानेपन का संकेत देते हुए उन्हें वृश्चिक राशि का कहा है। टेक्निक की दृष्टि से इनका विशेष महत्व नहीं आंका जा सकता है। सामाजिक पौराणिक। सामाजिक नाटकों की केंद्रीय समस्या नारी है, जो मुख्यतः सुधारवादी दृष्टिकोण से परिचालित है। इस तरह के नाटकों में बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध तथा विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि का समर्थन किया गया है। बालकृष्ण भट्ट के जैसा काम वैसा परिणाम, राधा कृष्णदास के दुखिनी बाला आदि नाटक ऐसे ही हैं। भट्ट जी के नाटक में दृष्टिकोण की प्रौढ़ता तथा योग्य व्यंग्य का तीखापन मिलता है, जो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप है। राधा कृष्णदास ने विधवा के स्वाभाविक शारीरिक शरीर धर्म को प्रस्तुत करते हुए दुखिनी बाला लिखा था। पहले इसका नाम विधवा विवाह नाटक था, जिसकी श्यामा भ्रूण हत्या करती है, पर दुखिनी बाला में सरला विषपान द्वारा आत्महत्या कर लेती है। वस्तुतः विधवा विवाह में यथार्थवादी दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है, जो समाज विरोधी होने के कारण बाद में दूसरी पुस्तक में बदल जाता है। अभी समाज इस तरह के नग्न यथार्थ को सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसे एक आदर्श की ओर मोड़ना पड़ा। बाद में चलकर समझौते की यही प्रवृत्ति प्रेमचंद के आदर्शोन्मुखी यथार्थ के रूप में प्रकट हुई। लाला जवाहरलाल वैद्य का कमल मोहिनी भवर सिंह नाटक पर नारी गमन के विरोध में लिखा गया। गोपाल राम गहमरी के विद्या विनोद में ओझाई, अनमेल विवाह, बहुविवाह का विरोध तथा पातिव्रत्य का समर्थन किया गया है। नारी समस्या के भारत दुर्दशा के मेल में भारतोद्धार, भारत आरत, भारत सौभाग्य, देश रक्षा आदि नाटक लिखे गए। उपन्यास। इस कालावधि में हिंदी उपन्यासों में मनुष्य के नए मानसिक विकास और अंतर विरोधों का इतिहास समाविष्ट है। आर्थिक व्यवस्था में उलटफेर, प्रेस, समाचार पत्र, शिक्षा की व्यवस्था, नए व्यावसायिक वर्ग का उदय आदि के कारण जो मध्यम वर्ग उत्पन्न हुआ, उसकी बहुमुखी तथा नई समस्याओं को अभिव्यक्त करने के लिए नवीन साहित्यिक विधा की आवश्यकता हुई। यह विधा उपन्यास थी। इसके पूर्व की साहित्यिक विधाओं काव्य, नाटक, आख्यायिका आदि के रूपाकार काव्य रूढ़ियों से बंधे होने के कारण नए विषयों के अनुरूप नहीं थे। इन रूपाकारों में जीवन की विविधताओं को उनकी समग्रता में आकलित नहीं किया जा सकता। बहुआयामी जीवन को बांधने के लिए ऐसी विधा की जरूरत थी जो स्वयं बहुआयामी हो, अर्थात जिसमें काव्य, नाटक, आख्यायिका आदि का अंतर्भाव होने के साथ और भी कुछ हो, उसका अपना निजी छंद हो किंतु वह स्वच्छंद हो। पूर्ववर्ती विधाएं बहुत कुछ अभिजातीय रूपाकारों, परंपरा मुक्त मूल्य, सार्वभौम सत्यों को अभिव्यक्त करती आई थी। उनमें वैयक्तिक अनुभवों के प्रकाशन का अवकाश नहीं था। उपन्यास सामूहिक अनुभवों के स्थान पर वैयक्तिक अनुभवों को तरजीह देता है। व्यक्ति अपने सामूहिक परिवेश में अनुभव प्राप्त करता है। उपन्यासों में वैयक्तिक अनुभव और परिवेश के विस्तृत चित्रण के लिए भूमि मिली। फॉरेस्टर इस समसामयिकता को लाइफ बाई टाइम का नाम देकर कहता है कि इस विशेषता के कारण ही उपन्यास अन्य साहित्यिक विधाओं से अलग हो जाता है। व्यापक अर्थ में सामयिकता और साहित्य का समन्वित रूप पहले पहल इस विधा में ही मिला। दूसरे शब्दों में जीवन की यथार्थ को चित्रित करने के लिए नई विधा आविष्कृत हुई। हिंदी उपन्यासों का आरंभ जीवन के उपदेश मूलक यथार्थ चित्रण द्वारा होता है, पर अतिरंजनापूर्ण काल्पनिक जीवन के अयथार्थ रोमांस भी कम नहीं मिलते। इस प्रकार रोमांस यथार्थ का अंतर्विरोध इतिहास के नैरंतर्य में ही पाया जाता है। रीतिकालीन प्रेम कल्पनाओं ने अभी पीछा नहीं छूट पाया था। क्रीड़ापरक प्रेम के उस समय के अनेक उपन्यास भरे पड़े हैं। उस समय सामंत सरदारों को चमत्कृत किया जाता था, तो इस समय जनता के एक व्यापक तबके के तिलिस्मों और ऐयारों द्वारा चमत्कृत किया जाने लगा। पर रोमांस उपदेश के भीतर से ही आगे चलकर यथार्थोन्मुखी उपन्यास का विकास हुआ। परीक्षा गुरु 1882 जो हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकृत कर लिया गया है मध्यवर्गीय जीवन से ही संबद्ध है। इसके पूर्व लिखे गए नारी शिक्षा विषय ग्रंथों को भी कुछ लोगों ने उपन्यास के खाते में डाल दिया है। देवरानी जेठानी की कहानी 1870, वामा शिक्षक 1872, भाग्यवती 1877 ऐसी ही पुस्तकें हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक कहानी कुछ आपबीती और कुछ जगबीती में औपन्यासिकता की संभावनाएं बताई जाती हैं, किंतु संभावनाओं के आधार पर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास राजा लक्ष्मण दास की कोठी के मुनीम मैनेजर थे। बाद में वे म्यूनिसिपल स्पिल कमिश्नर और आनरेरी मजिस्ट्रेट भी हुए। व्यापारी होते हुए भी वे साहित्य रचना में लगे रहते थे। इस उपन्यास की रचना के पहले वे रणधीर प्रेम मोहिनी जैसा प्रसिद्ध नाटक लिख चुके थे, पर परंपरा भुक्त प्रणाली से हटकर वे नई चाल की पुस्तक लिखना चाहते थे। इसका उल्लेख परीक्षा गुरु की भूमिका में लिखा गया है। इसे वे अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की संसारी वार्ता कहते हैं। संसारी वार्ता से साफ जाहिर है कि वे इसे परियों राजकुमारों पशु पक्षियों की अतिलौकिक कथाओं से अलग यथार्थ की भूमि पर खड़ा करना चाहते थे। लाला जी ने इसे नॉवेल भी कहा है। इसका मतलब है कि वे अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यासों की ढर्रे पर उपन्यास लिखना चाहते थे। भूमिका से ही पता लगता है कि उनके दिमाग में उपन्यास की योजना बन गई थी। उसमें परंपरा मुक्त सिलसिलेवार कथा नहीं कही गई है, बल्कि उसमें आवश्यकता अनुसार उलट फेर किया गया है। पात्रों के स्वभाव, उनके पारस्परिक संबंधों को यथासंभव विश्वसनीय बनाने की चेष्टा की गई है। बोलचाल की भाषा, पात्रों का काल्पनिक चित्रण, साकांक्षता आदि के संबंध में भी पहले से ही सतर्क थे। यही कारण है कि इसे हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती आदि में ये औपन्यासिक तत्व नहीं मिलते। इस उपन्यास में दिल्ली के एक ऐसे व्यापारी के सुधार की कहानी है जो कुसंग में पढ़कर गुमराह हो गया था। इस माध्यम से लेखक जीवन के विविध प्रसंगों का आकलन कर उन्हें एक ढीले सूत्र में पिरोता है। लंबे लंबे शिक्षा मूलक प्रकरणों के कारण यह सूत्र और भी शिथिल और कमजोर हो जाता है। मुख्य कथा के असंबद्ध इन प्रकरणों के फलस्वरूप उपन्यास का कथानक बेहद बिखर गया है। अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए बहुत सी ऐतिहासिक और उपदेश मूलक कथाएं भी बीच बीच में कह दी जाती हैं और उपन्यास बहुत कुछ विश्रृंखलित हो जाता है। पर यह बिखराव एक ओर इस उपन्यास की संघटना संबंधी त्रुटि की सूचना देता है, तो दूसरी ओर भावी उपन्यासों की संभावनाएं भी रेखांकित करता है। इसके चरित्र विभिन्न मनोवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका नायक मदन मोहन मूलतः अच्छा होते हुए भी कुसंग के कारण अपना सब कुछ खो बैठता है। वह अव्यवस्थित, खुशामत पसंद और प्रदर्शन प्रिय व्यक्ति है। ब्रजकिशोर नई रोशनी से प्रभावित, संयमी, विवेकवान, देश प्रेमी अपनी भाषा, संस्कृति, गत्यात्मक रीति नीति का समर्थक है। मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभुदयाल कुसंग से जीते जागते स्वरूप हैं। जीवन की छोटी मोटी और बुराइयों को उद्घाटित करने वाले ये चरित्र इतने आकर्षक नहीं बन पड़े हैं कि पाठकों के मन को रमा सके। सुख दुख, प्रामाणिकता, सावधानी, सज्जनता जैसे विषयों पर जो विचार विमर्श चलता है वह किताबी होने के कारण जी उबा देने वाला हो गया है। जिस भारतीय पुनर्जागरण का प्रभाव भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में, नाटकों और निबंधों में दिखाई पड़ता है, उसकी छाप परीक्षा गुरु पर भी निज है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल की प्रतिध्वनि इस उपन्यास में भी सुनाई पड़ती है। नए ढंग की खेती और कल कारखाने की उन्नति द्वारा देश को आधुनिक बनाने का मंतव्य भी व्यक्त किया गया है। अंग्रेजों की नकल को निषिद्ध ठहराया गया है। देसी भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। अखबारों की कद्र न करने की गिला की गई है। पुरानी पीढ़ी की कर्मठता को अनुकरणीय बताया गया है। नए फैशन विलासिता पर आक्रमण किया गया है। इस तरह उस युग को अपनी समग्रता में समेटने का जो प्रयास लाला जी ने किया है वह प्रशंसा के योग्य है। प्रेमचंद जी ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। लाला जी ने अपने नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी में रोमांटिक हैं तो परीक्षा गुरु में यथार्थ परक जीवन के यथार्थ को व्यक्त करने के लिए उन्होंने औपन्यासिक विधा को क्यों चुना? यह आकस्मिक नहीं है। उपन्यास मूलतः यथार्थ को आंकने वाली विधा है। नाटक की तरह यह भी मिश्रित विधा कंपोजिट आर्ट है, जिसमें कहानी, रेखाचित्र, निर्बंध, निबंध, कथोपकथन, विवरण, वर्णन, नाटकीयता, काव्य सभी का समावेश होता है। यदि कथानक निर्माण में लाला जी रीतिमुक्त हो पाते, जैसा कि प्रत्येक अध्याय में कोई न कोई नीति परक पद्य लिखकर कथा को लक्षण उदाहरण का नमूना बना दिया गया है, तो यह उपन्यास अधिक महत्वपूर्ण हो जाता।